समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है तपेदिक मुक्त भारत। टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग आम तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी रोग पैदा करने वाले कीटाणु एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यह संक्रमण रोग है और जब बीमार व्यक्ति खांसता और छींकता है तो इसके रोगाणुओं के छोटे कण हवा में फैल सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दिल्ली तपेदिक रोधी सम्मेलन देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी टीबी के मामलों से निपटने के लिए 100 दिन के अभियान की शुरुआत की थी। इस रोग के लक्षण, कारण, निदान, सावधानी और सरकार के प्रयासों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में डीडीजी टीबी प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पल्मोनरी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर विजय हड्डा। नमस्कार, आप दोनों का ही स्टूडियो में स्वागत है।
नमस्कार।
श्रोताओं, आपके मन में टीबी की बीमारी से संबंधित जो भी सवाल हैं तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 यानी 2331444 और 2342105 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल अब पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। धर्मवीर हैं दिल्ली से। जी धर्मवीर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गंजरिया दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार
जी। सवाल पूछिए।
जैसे कि ये टीबी का जो रोग है, ये किस कारण से शरीर इंसान को हो जाता है? क्या इसकी क्या परेशानी होती है? कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं? क्या इसका अभी तक कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना जो बचपन में ही लगा दिया जाए और जैसे और बीमारी हो? दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये कितने टाइम तक हम कंटिन्यू इलाज करें तो जो पेशेंट है कब तक ठीक हो जाता है? और ये दो बातें बताइए। और टीवी दो तरह की बताते हैं, एक
जी, जी,
खराब है,
बता रहे हैं धर्मवीर जी। जी
धन्यवाद
डॉक्टर विजय।
देखिए धर्मवीर जी, जो आपने पूछा है, एक तो ये कि क्या कोई इसका इंजेक्शन है जिससे टीबी आपको भविष्य में ना हो, और दूसरा ये कि टीबी की दवाई हमें कितने दिन खानी चाहिए। तो देखो, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम उसको एक BCG का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये काफी सालों से लगा रही हैं और उससे कुछ हद तक टीबी की बीमारी भविष्य में होने का चांस काफी कम हो जाता है। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि वो इंजेक्शन है या नहीं। दूसरी बात यह है कि एक बार जब टीबी हो जाती है तो ट्रीटमेंट यूजुअली डिपेंड करता है कि कहाँ की टीबी है। ज्यादातर केसेस में कम से कम 6 महीने की दवाई खानी होती है। जैसे फेफड़े की टीबी है तो जो 6 महीने की दवाई में ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। कुछ टीबी होती हैं जिसमें ट्रीटमेंट को थोड़ा सा लंबा देना पड़ता है, जैसे कि कई बार ब्रेन की टीबी है या कई बार हड्डियों की टीबी है, उसमें हम टीबी की दवाई को 6 महीने से ज्यादा भी देते हैं। स्पेशली जो बोन की टीबी है जिसमें ज्यादातर मरीजों को हम कम से कम 1 साल के लिए दवाई देते हैं। और ये होता क्यों है? यूजुअली देखो टीबी जो है दो तरह से होती है। एक हमारे अंदर जो कीटाणु जाते हैं, पहले ज्यादातर मरीजों में जो कीटाणु जाते हैं अंदर कुछ करते नहीं है। जैसे कोई ऐसा सिस्टम होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो कीटाणु अपने आप को एक्टिव कर देता है और जिससे बीमारी हो जाती है। ज्यादातर ये बीमारी हमें दूसरे मरीजों से ही लगती है जिसको टीबी होती है। तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग जब रास्ते में चलते हैं या आपस में मिलते हैं, जब खांसी करते हैं तो कोई सावधानी नहीं बरतते। कोई सामने खड़ा है उसके मुंह पे खांसी करते बिल्कुल भी नहीं चखते।
तो यूजुअली
जो खांसी करते हैं तो उसमें जो टीबी के कीटाणु हैं उससे दूसरे लोगों में संक्रमित होते हैं और एक बार जो सांस में चले गए तो वहां पे टीबी कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश से राजेश नयमा कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका एक सवाल है। जी राजेश जी, सवाल पूछिए।
जी नमस्कार।
नमस्कार,
मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नयमा बोल रहा हूँ
जी,
और मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं। पहला तो ये कि शरीर में किन किन अंगों में किस किस प्रकार की टीवी हो सके, और दूसरा कि जो अभी जो 100 दिन का जो अभियान चल रहा है टीवी मुक्त का, तो इसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में कुछ बताइएगा।
पहला सवाल डॉक्टर विजय से जो इन्होंने पूछा है कि कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली तो फेफड़ों का मानते थे
जी। देखिए, जो हम लोग डॉक्टर्स को जो पढ़ाते हैं तो दो में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी जो मतलब छाती की टीबी है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो छाती से बाहर की टीबी है। तो उसमें जो होते हैं मुख्य तौर पर जो ग्रंथियां जिनको लिम्फ नोड बोलते हैं उनकी टीबी सबसे कॉमन होती है, उसके बाद में बोन की टीबी होना, आंतों की टीबी होना, ब्रेन की टीबी होना, कई बार आंख की टीबी भी हो सकती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पर मुख्यतः जो मैंने 4-5 बताए हैं इन वाले हिस्सों में ज्यादा होती है।
डॉक्टर उर्वशी, जैसे इनका एक सवाल है, ये 100 दिन का जो अभियान जगत प्रकाश नड्डा जी ने शुरू किया है, क्या है उस अभियान में, क्या क्या ध्यान दिया जाएगा और कैसे इसको सफल बनाने की रणनीति?
तो जो पहले इतना कुछ बताया डॉक्टर साहब ने, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है उसके छोटे कण जो सूख के हवा में भी फैल सकते हैं। तो अगर आप किसी रूम में बैठे हैं जहां मरीज आपसे दूर भी बैठा है और वो हवा में उसके कण, कीटाणु के कण जो हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं, एयर ड्रॉपलेट न्यूक्लिया, उससे इन्फेक्शन, और छाती के थ्रू ही इन्फेक्शन बॉडी में आएगा और छाती की बीमारी शुरू में होगी और उसी से बाकी शरीर के हिस्सों में जाएगा। हमने जो ये कैंपेन चालू करी, जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर ने इनॉग्रेट करी ऑन सैटरडे, उसमें हमने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज किया है। जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो काफी सालों से बहुत मेहनत कर रहा है। 2 साल पहले एक स्टडी जिसमें पाया गया, नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे में पाया गया कि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे मरीज हैं जिनमें टीबी ज्यादा पाई जाती है, तो इन्हें हम वल्नरेबल ग्रुप्स या हाई रिस्क ग्रुप्स बोलते हैं, जिनमें डायबिटीज, HIV, वे लोग जिन्हें कभी पास्ट में टीबी हुआ हो, खासकर पिछले 5 साल में टीबी हुआ हो, वे लोग जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जो अल्कोहल या और किसी सब्सटेंस का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, और एक और ग्रुप जिसमें BMI बड़ा लो है, 18.5 से कम BMI है, ये 7 हाई रिस्क ग्रुप्स माने गए हैं, पाए गए हैं। ये लोग हमारे देश में 80% टीबी कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें टीबी की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक रहता है बिकॉज ऑफ कोमोबिडिटी, साथ में जो दूसरी बीमारी उसकी वजह से, या जैसे कहा मैंने पुरानी टीबी है, या ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, स्मोकर्स अल्कोहलिक्स में और बड़े रीजंस होते हैं कि उनमें टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कैंपेन के दौरान हम, अच्छा एक चीज और है कि इन मरीजों में जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स के साथ टीबी हो, जो क्लासिकली लोग मानते हैं कि 2 हफ्ते की खांसी होगी तभी टीबी होगा, इन मरीजों में एसिम्टोमेटिक टीबी भी हो सकता है जिनमें क्लासिकल सिम्टम्स ना प्रेजेंट करें और उन्हें फ्लोरिड टीबी, उन्हें टीबी बिगड़ भी सकता है और मरीज जानेगा ही नहीं कि उसको टीबी की बीमारी है। एक और जो सब क्लिनिकल टीबी है वो भी इन मरीजों में काफी हद तक पाया गया है। तो मरीज जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास पहुंचे कि मुझे तकलीफ है। इस 100 दिन के अभियान में हम 2-3 चीजें न्यू कर रहे हैं। एक तो ये जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं इनमें एसिम्टोमेटिक क्लिनिकल टीबी के लिए हम पहले स्क्रीनिंग करेंगे एक्सरे के द्वारा। हम सभी वल्नरेबल मरीजों को एक्सरे की स्क्रीनिंग ऑफर करेंगे क्योंकि स्क्रीनिंग में एक्सरे इज द बेस्ट मेथड, जिसमें एक्सरे में कुछ पाया जाएगा उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट से हम कंफर्म करेंगे एज टीबी। और जो जनरल कम्युनिटी में सिम्टम्स जिन मरीजों को होंगे, हम सिम्टम्स भी, पहले सिर्फ खांसी की बात होती थी, अब हम सारे सिम्टम्स पे चाहेंगे कि सब लोग अपनी सिम्टम्स पे ध्यान दें। टीबी प्रेवलेंस सर्वे में यह भी पाया गया कि लोग जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, जो डॉक्टर के पास जाने की उनकी इच्छा है, वो थोड़ा सा लोग अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज कर देते हैं।
जैसे डॉक्टर अरविशी आपने खांसी की तो बताई, और भी सिम्टम्स क्या हैं वो भी बता दीजिए।
तो हल्का बुखार जो कुछ समय से चल रहा हो, जैसे शाम के समय बुखार आए या रात को सोते समय पसीना आए, वजन में गिरावट हो, शरीर में कोई चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे स्वेलिंग है, या जैसे कहीं पेट का फूलना, जोड़ों में कुछ ऐसी लगे आपको अनयूजुअल सी प्रेजेंटेशन, चेस्ट में पेन रहे, छाती में दर्द हो, काफी सारे लक्षण ऐसे हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आप अपनी स्क्रीनिंग जरूर कराएं। स्क्रीनिंग सिर्फ एक एक्सरे से होगी, अगर एक्सरे में कुछ पाया गया तो हम उसको नेट से कंफर्म करेंगे। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जैसे डॉक्टर हड्डा जी ने बताया कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। अगर ज्वाइंट से हुआ, बोन से हुआ, तो कोई स्वेलिंग रही लिम्फ नोड में, जैसे नेक पे स्वेलिंग हो गई, या कहीं जैसे आपका सांस फूल रहा है, उसमें हो सकता है कि मीडिया साइनम की भी इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स होते हैं, तो ऐसे में जरूर डॉक्टर से परामर्श करें और सिम्टम्स को लेकर घर पे ना बैठे रहें। हल्का बुखार को इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है।
इस पे चर्चा जारी रखेंगे। ऋषभ कुमार तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका एक सवाल है। जी ऋषभ जी
नमस्ते। मैडम
नमस्कार, सवाल पूछिए।
जी मेरा सवाल यह है मैडम कि मान लीजिए किसी को टीबी हो गया है और उसने 6 महीने का अपना कोर्स पूरा कर लिया है, तो चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की, आगे यदि वो शादी विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें वैवाहिक जीवन व्यतीत करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब खासतौर से संबंध ये सब बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा।
देखिए हमने जी, तो सबसे पहली बात यह है कि जो टीबी के साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है हमारी कम्युनिटी में, वो बहुत गलत है। टीबी का डायग्नोसिस समय पे हो जाए तो टीबी की पूरी अच्छी जांच 6 महीने के भीतर खत्म हो जाएगी। अभी आपने सुना होगा कि हमने ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी 6 महीने का इलाज हमारी कंट्री में ऑनरेबल HFM ने अभी लॉन्च किया है कुछ समय पहले, वो जल्दी। सो 6 महीने का इलाज, पूरा कंप्लीट इलाज हो जाता है अगर पेशेंट उसको लग के पूरा इलाज करे। बीच में इलाज को छोड़ना नहीं है, अगर कोई साइड इफेक्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो ट्रीटिंग डॉक्टर के पास लौट के जाएं, हमें ये परेशानी है, वो अल्टरनेटिव आपको ट्रीटमेंट देंगे और ये कंप्लीट क्योर हो जाता है। जब इसको बीच में छोड़ा जाए तो यह लाइलाज ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी बन सकता है,
बहुत खतरनाक,
तो बहुत खतरनाक और फैल सकता है शरीर में। अगर बीच में ट्रीटमेंट होता क्या है, दवा शुरू किया आपने, कुछ समय में आपको अच्छा लगना लगेगा, आपको लगेगा हम क्योर हो गए, बट जितनी इस पे रिसर्च हुई है उसी से हम लोगों ने सीखा है पूरा इलाज बहुत जरूरी है। और जहां तक आपका जो प्रश्न था कि शादी के बाद कोई चिंता की वजह नहीं है, अगर ट्रीटमेंट पूरा लिया गया हो कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, और कभी ऐसा लगे कि कोई सिम्टम वापस आ रहा है तो इसमें निसंकोच होकर डॉक्टर के पास लौटें और उनसे दोबारा जांच करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बोलें। पर ऐसा कुछ नहीं है कि उनके आने वाली जिंदगी में उन्हें इससे कोई तकलीफ होगी, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लौट के आएगी, सिर्फ उन्हीं में तकलीफ होती है जो इलाज पूरा नहीं करते।
दिल्ली से गजराज का एक सवाल है। जी गजराज जी।
हेलो नमस्ते मैडम जी।
नमस्कार, सवाल पूछिए।
डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
नमस्कार जी।
जी ऐसा है, मेरा छोटा भाई है, उसको जो है ना मुंह से जो है ना खून की पलटी आ जाती है, तो क्या वो टीबी का लक्षण है?
अगर खून की उल्टी आ रही है डॉक्टर
जी, देखिए खांसी में खून आना या उल्टी में खून आना थोड़ा सा दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर अगर जवान बच्चे हैं तो उसमें चांद चीज ये है कि जो मुंह से खून आ रहा है वो खांसी में ही आ रहा होगा, पर फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखाएं, हम जब देखते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि ये खांसी में खून आ रहा है या उल्टी में खून आ रहा है। अगर खांसी में खून आ रहा है तो ये एक्टिव टीबी का लक्षण भी हो सकता है, और दूसरा कई बार ये भी पाया गया है कि पहले कभी टीबी हुई थी वहां पे लंग्स में कुछ दाग बन गए हैं और उन स्पॉट से ब्लीडिंग होती रहती है। तो मेरे को लगता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है आधी है, एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपकी जांच करके तब हम अच्छी तरह से बता पाएंगे कि ये एक्टिव टीबी है या हील टीबी है या कुछ और रीजन है।
जी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक बार चेकअप करा लीजिए और इलाज पूरा कीजिए। डॉक्टर उर्वशी जी अभी आप बता रही थी कि जो डॉक्टर ने बोला है कोर्स पूरा कीजिए, और अगर बीच में छोड़ देंगे तो बहुत खतरनाक होता है। तो एक बार इस रोग से अगर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो क्या दोबारा कोई टेस्ट कराना चाहिए कुछ समय बाद?
देखिए, अगर आप पूरा ठीक हो चुके हैं तो हम ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम 2 साल तक आपका पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलो अप डॉक्टर के पास रहना चाहिए, क्योंकि जो रिलैप्स होते हैं केसेस वो पहले 2 साल में मैक्सिमम होते हैं। तो आपको सिर्फ डॉक्टर से टच में रहना है, वो आपकी एट द मोस्ट एक एक्सरे स्क्रीनिंग और कर लेंगे ड्यूरिंग फॉलो अप पीरियड, जो 2 साल का फॉलो अप पीरियड हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 साल में अगर दोबारा टीबी होना होगा, ज्यादा करके इन्हीं 2 साल पहले 2 साल में होता है। तो सबसे जरूरी है अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना और उनसे हर 6 महीने पहले 2 साल पोस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलते रहना चाहिए, और अपना कॉन्फिडेंस ही बिल्ट होगा आपका कि आप ठीक ठाक हैं।
उत्तर प्रदेश कुशीनगर से आलोक चौरसिया का सवाल है। जी आलोक जी, नमस्कार।
जी जी मैडम
जी, सवाल पूछिए आलोक जी।
हम यही पूछ रहे हैं कि हमारा माता जी है जो बहुत पुराना से टीबी के रोगी से
जी
है, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि अभी तक आराम नहीं हुआ, दवा भी चलता है प्राइवेट से भी सरकारी से भी, कुछ आराम नहीं हो रहा है, दवाई से ही मतलब वो जी रही है, अगर दवा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि वो मतलब नहीं जी पाएंगी। तो उसके लिए थोड़ा कुछ अपने हिसाब से बताइए कि क्या किया जाए।
देखिए, गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट की ट्रीटमेंट सेंटर्स का नेटवर्क है वो किसी और कंट्री में मैच नहीं है। सो सबसे पहले तो डायग्नोसिस आपके पास ठीक होना चाहिए, मतलब आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट सेंटर से, आप जहां रहते हैं वहां कोई हेल्थ वेलनेस सेंटर होगा, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट का नेटवर्क जो हमारी कंट्री में है वो दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है। 8,300 से ज्यादा मशीनें हमारी कंट्री में हैं, दूर दूर पीएचसी तक हमारी मशीनें उपलब्ध हैं, एक्सरे फैसिलिटी भी हमारी पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक में उपलब्ध है। तो अगर आपका डायग्नोसिस टीबी का ठीक बना है और उसके हिसाब से इलाज हो रहा है तो मतलब मरीज को रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहिए। एक जरूरी बात है कि मरीज डाउट में आके या किसी साइड इफेक्ट की वजह से दवा ना छोड़े, जो डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करें वो मरीज को दवा लेनी जरूर लेनी चाहिए, और जैसा हमने पहले कहा कि 6 महीने में मरीज पूरी तरह क्योर हो जाता है। अगर उनका क्योर नहीं हो पा रहा है तो आप वापस जाके डॉक्टर से मिलें, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रीजन है कि उन्हें फायदा नहीं हो रहा। तो घर में बैठे अपनी तकलीफ लेके बैठे ना रहें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और प्राइवेट से बेटर तो हम कहेंगे, क्योंकि प्राइवेट किस लेवल के आप जा पा रहे हैं, उन्हें कितनी उनके पास सुविधा उपलब्ध है, गवर्नमेंट सेंटर में जाएं जहां पूरी सुविधाएं हम इंश्योर करते हैं उपलब्ध है।
प्रकाश शोलापुर महाराष्ट्र से उनका एक सवाल है।
जी प्रकाश राउत, सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
जी जी प्रकाश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
हाँ मैं टीचर हूँ, मैं ऐसा हमारा प्रश्न है कि हमारे देश में कितने मरीज है, हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 100 डेज में ये मुहिम करके टीबी का टीबी खत्म करना है तो क्या क्या उपाय करना पड़ेगा।
डॉक्टर दोषी
जी, तो देखिए हमारे देश में मरीज काफी संख्या में है, और अभी हमारा 100 दिन में ये प्रयत्न है कि जो मरीज इलाज जिनके अभी तक नहीं मिल रहा, जो आइडेंटिफाइड नहीं है, जो सिस्टम में नोटिफाइड नहीं है, जिन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें टीबी है, हम ऐसे मरीजों को पहचानना चाह रहे हैं ताकि उन्हें ठीक इलाज दिया जा सके, और हम जो हाई रिस्क ग्रुप या वल्नरेबल ग्रुप में जल्दी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मरीज सिम्टम्स से नहीं प्रेजेंट कर रहे, वो आ ही नहीं रहे डॉक्टर के पास, तो हम मरीज के पास जा रहे हैं। हमारी अप्रोच में चेंज है कि हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच कर रहे हैं, हम मरीज के पास जाके पहचानना चाह रहे हैं कि जिन्हें टीबी है उन्हें जल्दी इलाज दिया जाए, ताकि वो टीबी उनके परिवारजनों को या उनके निकट संबंधियों को ना फैले, उन्हें जल्दी आइडेंटिफाई करके उन्हें ठीक और पूरा इलाज हम कराएंगे। तो हमारा एफर्ट अभी ये हाई बर्डन जो ज्यादा जिन जिलों में टीबी रिपोर्ट होती है, जहां टीबी की वजह से डेथ्स ज्यादा रिपोर्ट होती हैं, या जहां टेस्टिंग रेट कम है किसी भी कारण से, हमने ये पूरे देश में से आधी डिस्ट्रिक्ट्स को पहले चुना है, उनमें हम पहले ये काम करेंगे और उसके बाद हम बाकी आधी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। हम सारे हाई रिस्क ग्रुप को एक्सरे से पहले स्क्रीन करेंगे और उसको नेट से कंफर्म करके उनका इलाज करेंगे, और सिम्टम जैसे मैंने कहा कम्युनिटी में जिनको सिम्टम्स हैं उनको हम टेस्ट ऑफर करेंगे, एक्सरेज करेंगे और टेस्ट करेंगे और इन्हें इलाज शुरू करेंगे।
डॉक्टर, कौन कौन से इलाकों में या कौन कौन से ऐसे कार्यस्थल जहां आते हैं जहां आप विशेष ध्यान देंगे कि यहां मरीज हो सकते हैं उनकी हमें टेस्टिंग करनी चाहिए।
जी, तो कुछ तो हमने आपको हाई रिस्क ग्रुप्स बताए जिनमें हमने 7 ग्रुप्स पहले बताए
जी.
इन एडिशन जो लोग जैसे जो ऑक्यूपेशनल भी जैसे माइनिंग कर रहे हैं या जो स्टोन क्रशिंग कर रहे हैं जहां मतलब उनका एक्सपोजर डस्ट को ज्यादा है, ऐसे लोगों में भी हम इंटेंसिव कैंपेन में हम टीबी की जांच कराएंगे और इन मरीजों में टीबी ज्यादा पाया जाता है. हमारा एफर्ट यही रहेगा कि इनका टीबी जल्दी पता चले और हम इनका इलाज कर पाएं. और ट्राइबल एरियाज में भी क्योंकि वे लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंचते अपने सिम्टम्स लेके, तो हम घर घर मतलब हम मरीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
मोबाइल वैन्स
हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट हम लोग रोज मीटिंग ले रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल वैन्स हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक एक कैंप लगा रही है. और मरीज जो है बहुत जरूरी है कम्युनिटी का उनको सपोर्ट करना, उनको स्टिग्मा से अलग नहीं करना, उन्हें इलाज की तरफ और सरकारी सेंटर्स की तरफ लेके आए ताकि उन्हें ना सिर्फ दवा का सपोर्ट मिले बल्कि न्यूट्रिशन का भी सपोर्ट मिले. आप लोग जान रहे होंगे कि अभी पीछे ही गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर निक्षय पोषण योजना डबल कर दी है, 500 रूपये माह की बजाय 1000 रूपीज 1000 रूपये प्रति महीना मिल रही है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. प्लस निक्षय मित्रास जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं परिजनों को, फैमिली को निक्षय बास्केट पोषण बास्केट देके ताकि परिजनों का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, इम्यूनिटी ठीक रहे, उन्हें भी टीबी की संभावना घटे. तो ये एफर्ट सरकार की तरफ से अपनी तरफ से जारी है और जितने भी निक्षय मित्रास आगे आएंगे वो जो हमारी कंट्री में हमने ये अपने डेटा में पाया जिनको ये पोषण का सपोर्ट मिल रहा है वो लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, उनमें रिकवरी बेटर है, उनका ट्रीटमेंट क्योर रेट बेटर है. तो ये निक्षय की जो पोषण की जरूरत है टीबी के इलाज के लिए वो बहुत जरूरी है. और जितने लोग इसमें सपोर्ट करें, जितने प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे ऑनरेबल पीएम ने पहले ही ये ऐलान किया था कि जन भागीदारी से ही इस बीमारी का
निदान
हो पाएगा और कंट्री इससे फ्री हो पाएगी.
कुपोषण भी क्या इसका कारण है, इस पे भी चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले हरियाणा से ओम प्रकाश जी जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनका एक सवाल है. जी ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए.
हाँ जी नमस्कार जी, ओम प्रकाश सिरसा हरियाणा
जी.
तो मेरी एक दो जिज्ञासा है, जैसे निमोनिया, यानी पहले निमोनिया ऐसा देखा गया है कि निमोनिया वगैरह होता है, जैसे आजकल विंटर का सीजन आ गया तो जब हम कोई चाय वगैरह पी के कुछ ठंडे तालाबों में उतर जाते हैं तो उससे भी ज्यादा निमोनिया होने का चांस रहते हैं. निमोनिया का एक रूट कॉज इसका ये भी है, और दूसरा किस आयु वर्ग में ये ज्यादा प्रभावित करता है, कृपया दोनों पर प्रकाश डालें, धन्यवाद, आभार.
डॉक्टर विजय,
देखिए जो निमोनिया है वो एक डिफरेंट बीमारी है. ज्यादातर जब निमोनिया तब बोलते हैं जो बुखार खांसी बलगम थोड़े दिनों का होता है. जो निमोनिया होगा तो 2-3 दिन में फीवर आता है, खांसी आएगी, और वो तेज बीमारी होती है एकदम से. जबकि टीबी है वो थोड़ा सा लंबे वाला बीमारी होता है, उसमें भी निमोनिया हो सकता है, पर वो यूजुअली जो बुखार तेज नहीं होता, हल्का बुखार होता है, खांसी होती है, बलगम आता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, पर ज्यादा तेज नहीं होता टीबी वाला निमोनिया. तो ये वाला डिफरेंस है. जो तालाब में नहाना धोना जो इस तरह के जो निमोनिया होते हैं वो ज्यादातर टीबी की निमोनिया ना होके दूसरे वाला निमोनिया जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है वो होता है. टीबी वाला जैसे मैंने बताया वो डिफरेंट होता है
जी. डॉक्टर उर्वशी, हम बात कर रहे थे कुपोषण की, किस बेसिकली उसके कारण या क्या बीमारियां होती हैं जिनको टीबी होने के ज्यादा अंदेशा रहता है, या क्या माल न्यूट्रिशन भी एक कारण है
जी. तो जैसे मैंने पहले हाई रिस्क ग्रुप कहा, डायबिटीज, HIV, स्मोकर्स, एल्कोहलिक्स, पास टीबी, ओल्ड एज, और जो 7वां बहुत मेजर पाया गया हमारी अपना हिंदुस्तान में जो पाया गया कि BMI जब लो रहे 18.5 से कम रहे, ऐसे मरीज हमारे 46% ऑफ आर टीबी इन आर कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं. 46% ऐसे लोग हैं जो कुपोषित हैं. तो जो कुपोषण और टीबी का दो राह ही है, टीबी होगी तो वजन गिरेगा, उसमें भूख कम लगती है, कम खाना खाते हैं, तो प्लस मेटाबॉलिज्म ऐसा इफेक्ट होता है कि वजन गिरता है, और जब वजन कम हो तो उसमें टीबी के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यून रिस्पांस पुअर रह जाता है
जी.
तो कुपोषित लोगों में टीबी, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, ज्यादा पाया जाता है. तो हम इनमें भी स्क्रीनिंग ऑफर कर रहे हैं. तो जो लोग कुछ समय तक मतलब लो बीएमआई कंटिन्यूसली रहते हैं उन्हें भी अपनी जांच स्क्रीनिंग एक बार साल में करा लेनी चाहिए कि उनको ऐसा कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, लंबी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उनका वजन कभी बढ़ता ही नहीं है
जी।
तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने इनिशिएटिव लिया है नॉट ओनली टू सपोर्ट कुपोषित जैसे लो बीएमआई के मरीज बट ऑल्सो उनके परिवारजनों को, टीबी के मरीजों के परिवारजनों को भी सपोर्ट करने का, तो ये इनिशिएटिव विल गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीबी पेशेंट।
एक बात और मैं करना चाहता हूँ इसमें, देखिए आजकल ना एक जो बड़ा फैशन बन गया है कि हम डाइटिंग करेंगे वेट कम करने के लिए
बच्चियों,
तो डाइटिंग,
बच्चों में
डाइटिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ट्यूबरकुलोसिस होने का,
किसी चीज की कमी रहती होगी
जी, बिकॉज उससे कुपोषण होता है। आप डाइटिंग करते हैं ना तो जो एकदम ड्रेस्टिक वो सब कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं उससे भी कुपोषण हो सकता है और उसकी वजह से टीबी हो सकती है
जी। एक बहुत अच्छी आपने बात बताई कि डाइटिंग के उसमें ये ध्यान रखें कि आप खाना प्रॉपर खाएं। मध्य प्रदेश छतरपुर से राशिद अहमद का एक सवाल है जी। राशिद जी नमस्कार।
नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते सर, सर लोग नमस्ते। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं सर
जी, पूछिए।
एक तो ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीनेशन के बारे में बता दें, बचपन में किया जाता है और एडल्ट वगैरह में कोई इसका प्रावधान हो। दूसरा ये डॉट से ट्रीटमेंट की बहुत चर्चा सुनने में आती है, कृपया दोनों प्रश्नों के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें
जी।
जी देखिए, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो वैक्सीन है एक तो हम बहुत सालों से लगा रहे हैं बच्चों में जिसको बीसीजी बोलते हैं, जैसे पैदा होता है अगर सरकारी अस्पताल में हुआ है तो उसको अगले दिन ही लगा देते हैं। अब कुछ दिनों से पिछले करीबन एक दो साल से कुछ अडल्ट वैक्सीनेशन भी हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं, वो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। कुछ दिनों बाद में हमें उसके रिजल्ट पता लगेंगे तो हमें थोड़ी सी ज्यादा जानकारी मिलेगी कि अडल्ट्स में भी इसको दोबारा बीसीजी लगाने का कितना फायदा होता है।
एक डॉट्स के बारे में
एक दूसरा जो डॉट्स आपने बोला, ये देखिए हर जो भी इंडिया में रहता है उनको पता होना चाहिए कि भारत सरकार इतना कुछ कर रही है टीबी के लिए स्पेशली, और डॉट सेंटर एक ऐसा फैसिलिटी है जहां पे आपको टीबी की दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वहां आप जाते हो तो आपका टीबी संबंधित जांचें भी होती हैं, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और नेट बोलते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा टेस्ट होता है, थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाती है। और खास बात यह है कि जैसे मरीज वहां पर जाता है तो उसका टीबी की दवाई इस तरह मिलती है कि एक बॉक्स उसके लिए उस नाम का एक बॉक्स बन जाता है और उसी बॉक्स से हर बार दवाई निकाल के दी जाती है। तो इससे ये अश्योर करते हैं हम कि जो टीबी की दवाई उसके लिए बनी वो उसने कितनी खाई,
कितनी ली और उसे पूरी दवाई।
जब पूरी दवाई लेने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि कम से कम 80% दवाई उसमें से ली हो तो हम बोलते हैं कि हाँ उसने ट्रीटमेंट लिया है। तो डॉट्स एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है टीबी के सभी मरीजों के लिए।
डॉक्टर ऋषि, आप
बीसीजी का जी, तो बीसीजी का टीका जो जीरो डे पे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जीरो डे या फर्स्ट डे पे लगाया जाता है, वो बच्चों में पाया गया कि सीरियस टीबी से बचाव करता है, ब्रेन की टीबी से और पूरे शरीर में जो मिलेरी टीबी हम बोलते हैं पूरे शरीर ऐसे इन चीजों से बचाव करता है और बच्चों की लाइफ बचाता है। बट उसके बाद जो अडल्टहुड की वैक्सीन है सारी अभी ट्रायल फेज में चल रही है। एक इंडिया में भी दो तीन ट्रायल्स हुए अभी हाल ही में, ये हाई रिस्क ग्रुप्स में बीसीजी का एडल्ट वैक्सीनेशन ट्रायल जो चल रहा है उसके अभी फाइंडिंग्स आने बाकी हैं। अगर वो ठीक पाया गया तो एटलीस्ट हाई रिस्क ग्रुप्स में उसको दे पाएंगे। एक और ट्रायल आईसीएमआर ने किया जिसमें पाया गया कि एडोलेसेंट बच्चों में रिकॉम्बिनेंट बीसीजी फायदा दे रही है। तो ये जो ट्रायल्स होते हैं बहुत ही केयरफुली कंडक्ट होते हैं, सेफ्टी पहले इंश्योर की जाती है वैक्सीन की, उसके बाद ही ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं। और जब उसका एनालिसिस होता है इस स्केल पे होता है कि पूरा इंश्योर किया जाता है किसको फायदा देगा किसको नहीं, उसके बाद ही हम रेकमेंड करते हैं कि पॉपुलेशन में दिया जाए। तो बहुत सावधानी बरती जाती है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो इसलिए दी जाती है कि मरीज पूरी दवा खा ले और दवा को फेंके ना, क्योंकि अगर वो दवा पूरी नहीं खाएगा तो जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएगा जिसकी ट्रीटमेंट काफी कठिन होती है और बहुत महंगी भी होती है। जबकि गवर्नमेंट सब दे रही है पूरा सपोर्ट कर रही है तो आपको पूरा उसका फायदा उठाना। जैसे मैंने कहा जितना नेटवर्क हमारी गवर्नमेंट का हमारी कंट्री में है टेस्ट का ट्रीटमेंट का उतना कहीं और नहीं है।
डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने और बहुत जरूरी है कि जागरूक हो, डॉक्टर के द्वारा बताए गए इलाज को ठीक से फॉलो करें। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, इस चर्चा को यहीं विराम दें। तो हम अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि वो स्टूडियो में आया, तमाम उन्होंने जानकारी दी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSTtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। फिलहाल नमस्कार।